बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये इस किताब का पार्ट नंबर 14 है। आज हम किताब मुताला पाकिस्तान लाजमी रिकॉर्ड कर रहे हैं। बराए बीए, बीएससी, बीकॉम, जदीद निसाब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मुताबिक इस किताब के मुसन्निफ मोहम्मद नईम ताहिर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। ये किताब आपकी खिदमत में असफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। यह सफ़ा नंबर 148 है। आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 14। सैंडक के मुकाम पर दरियाफ्त होने वाले ज़खायर का अंदाज़ा 412 बिलियन टन लगाया गया है। नंबर 8, चूने का पत्थर। चूने के पत्थर के ज़खायर हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। इसको सीमेंट बनाने, चीनी तैयार करने और दीगर सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने की सनत में होता है। चूने का पत्थर घरों में सफ़ेदी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़खायर, पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में चूने के पत्थर के ज़खायर पाए जाते हैं। मसलन दंदूत, दाऊद खेल, वाह, रोहड़ी, हैदराबाद, कराची वगैरह। नंबर 9, संगे मरमर। हमारे मुल्क में संगे मरमर मुख्तलिफ अकसाम में पाया जाता है। सबसे अच्छा संगे मरमर खैबर एजेंसी में मलागोरी के मकाम से हासिल किया जाता है। ये पत्थर इमारतों में फर्श लगाने और दीवारों पर खूबसूरती और नफासत के लिए लगाया जाता है। हमारे मुल्क में दरियाफ्त शुदा संगे मरमर का जखायर मरमर के जखायर अंदाजन 86 मिलियन क्यूबिक फिट लगाया गया है, जबकि बाकी अकसाम का अंदाज़ा 700 मिलियन टन है। जखायर, संगे मरमर के जखायर सूबह बलूचिस्तान के ज़िला चागी, सूबह सरहद के मर्दान, नौशहरा, सवात, दीर और हज़ारा, गिलगित के इलाकों से हासिल किया जाता है। इसके अलावा ज़िला अटक और कच्छ और कुछ आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर के मकाम से भी मिलता है। नंबर 10, आतिशी मिट्टी। इससे नहायत मजबूत ईंटें बनाई जाती हैं, जो आमतौर पर फौलाद पिघलाने की भट्टियां बनाने में इस्तेमाल होती हैं। आतिशी मिट्टी के अलावा चीनी के जरूफ बनाने वाले मिट्टी भी पाकिस्तान में दस्तियाब है। इससे टाइलें और सैनिटरी का सामान भी बनाया जाता है। ज़खायर, आतिशी मिट्टी के ज़खायर कोहिस्तान, नमक और काला चिट्टा के पहाड़ में काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में आतिशी मिट्टी के अलावा चीनी मिट्टी के ज़खायर ज़्यादातर सवात, हज़ारा और मालाकंड के इलाकों में पाए जाते हैं। नंबर 11, गंधक। गंधक कीमियाई सनतों में इस्तेमाल की जाती है। गंधक की सफाई करके इसे कीमियाई और सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए क्वेटा और कराची में कारखाने कायम किए गए हैं। ज़खायर, इसके ज़खायर ज़्यादातर बलूचिस्तान के अजला चागी में वाक़ मुर्दा आतिशफिशां पहाड़ कोह सुल्तान में वाक़ हैं। जैकबाबाद और मर्दान के अजला से भी गंधक निकाली जाती है। इसके अलावा गंधक के ज़खायर सानी, ज़िला कच्छी, सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है। मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें हर साल तकरीबन 30,000 टन गंधक बैरूनी ममालिक से दरियाफ्त करनी पड़ती है। नंबर 12, कीमती पत्थर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अकसाम के कीमती पत्थर जिसमें जमरुद, याकूत वगैरह काफ़ी मकदार में मिलते हैं। हमारा मुल्क कीमती पत्थरों को बरामद करके हर साल बहुत सा ज़र मुबादला कमाता है और ये काम कीमती पत्थरों की बरामदी कारपोरेशन सर अंजाम देती है। ज़खायर, हमारे मुल्क में कीमती पत्थरों के ज़खायर ज़्यादातर गिलगित, हमजा के अलावा मर्दान, मालाकंड और चित्राल के इलाकों में पाए जाते हैं। नंबर 13, सोना चांदी। हमारे मुल्क में सोना चांदी बहुत कम मकदार में हासिल होते हैं। कुछ सोना दरियाए सिंध की रेत को साफ करके हासिल किया जाता है। सोना चांदी ज़्यादातर जेवरात बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा आलमी मंडी में ये धातें तजारत के हवाले से बड़ी अहम समझी जाती हैं। ज़खायर, दरियाए सिंध की रेत को साफ करने के अलावा कुछ सोना चांदी, सोना और चांदी सूबे बलूचिस्तान में सैंडक के मकाम पर दरियाफ्त होने वाले तांबे के ज़खायर से भी हासिल होने की उम्मीद है। नंबर 14, खाम लोहा। हमारे मुल्क में लोहे की बाकायदा पैदावार हासिल नहीं की जा रही, क्योंकि हमारे यहाँ दरियाफ्त शुदा लोहे की मकदार कम होने के अलावा इसे अच्छी अकसाम में शुमार नहीं किया जाता, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी बड़ी या दरमियानी साइज़ की स्टील मिल के लिए नाकाफी है। चनाचा कराची के करीब स्टील मिल का इन्हिसार दरामदी खाम लोहे पर है। खाम लोहे की मंदरजा ज़ेल अकसाम हैं। नंबर 1, मैगानाइट। ये सबसे उम्दा किस्म का लोहा शुमार किया जाता है। नंबर 2, हेमानाइट। इस लोहे को दूसरे दर्जे का लोहा तसव्वुर किया जाता है। नंबर 3, लेमोनाइट। ये खसूसियात के अतबार से तीसरे दर्जे का लोहा है। नंबर 4, सैडराइट। ये सबसे हल्के किस्म समझी जाती है। जखायर, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खाम लोहा दरियाफ्त हुआ है, जिनमें अहम इलाकों की तफसील दर्ज ज़ेल है। नंबर 1, जिला मियांवाली। पाकिस्तान के जिला मियांवाली में लोहे के सबसे बड़े जखायर हैं। लोहे के ये जखायर जिला मियांवाली के इलाके कालाबाग में वाक़ हैं। यहाँ पर पाया जाने वाला लोहा उम्दा किस्म का नहीं है। नंबर 2, जिला हजारा। सूबा सरहद के जिला हजारा की तहसील हरिपुर में लंगड़ियाल के मकाम पर लोहे की दरियाफ्त हुई है। ये मकाम अहमदाबाद के जनूब में तकरीबन 20 मील के फासले पर वाक़ है। नंबर 3, जिला अहमदाबाद। अहमदाबाद के शुमाल में तकरीबन 10 मील के फासले पर गालदीन के मुकाम पर खाम लोहा दरियाफ्त हुआ है। नंबर 4, जिला चित्राल। सूबा सरहद में जनूबी चित्राल के इलाके दरवेश के मुकाम पर तकरीबन 20 मील के फासले पर डोमल नसियार के मुकाम पर लोहे के जखायर दरियाफ्त हुए हैं। यहाँ से मिलने वाला लोहा उम्दा किस्म का होता है। बरामदात और दरामदात। जो अशिया दूसरे ममालिक को फरोख्त की जाती हैं या दूसरे ममालिक से मंगवाई जाती हैं, उन्हें बिलतरतीब बरामदात और दरामदात कहते हैं। बरामदात और दरामदात का तिजारत में अहम किरदार होता है। जो अशिया मुल्क की जरूरियात से जायद होती हैं, उन्हें दूसरे ममालिक को फरोख्त कर दिया जाता है, और जिन अशिया की कमी वाकई हो, वो बैरूनी ममालिक से हासिल करके कमी को पूरा किया जाता है। इस तजारत से सनअत और हरफत को तरक्की मिलती है, लोगों को रोजगार मुहैया होता है और खुशहाली बढ़ती है। इसके अलावा मुल्की अशिया को बैरून मुल्क फरोख्त करके जर मुबादला हासिल किया जाता है, जिसके जरिए गैर मुल्की जरूरी सामान खरीद कर मुल्क में लाया जाता है। पाकिस्तान की बैरूनी तजारत में अदायगियों का तवाजुन पाकिस्तान के खिलाफ है, यानी हमारी दरामदात की मालियत बरामदात से ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे जर मुबादला के जखायर पर मनफी असरात मुरतब होते हैं और तजारत के अमल को धचका लगता है। हुकूमत की कोशिश है कि बैरूनी अदायगियों के तवाजुन को दुरुस्त किया जाए। इस मकसद के लिए गैर मुल्की तजारत को मजीद वसत दी जा रही है। दरामदात कम करने और बरामदात को बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें हो रही हैं। अगर आबादी के तेज रफ्तार इजाफे पर काबू पा लिया जाए, तो हमारे वसाइल हमारी जरूरतों को पूरा करने के अहल हो सकते हैं। इस तजारत में बैरूनी अदायगियों का तवाजन भी दुरुस्त किया जा सकता है। पाकिस्तान की अहम दरामदात में खाम तेल, मशीनरी, खुर्दनी तेल, केमिकल, ट्रांसपोर्ट का सामान, कारें, ट्रकों और बसों के चेचिज, ट्रैक्टर, खाम लोहा और स्टील, दमाएं, चाय, खुश्क दूध, बिजली का सामान, खाद, दालें, कागज, स्टेशनरी वगैरह। जिन ममालिक से ये अशिया हासिल की जाती हैं, इनमें जापान, अमरीका, हॉलैंड, सऊदी अरब, कुवैत, इंग्लिस्तान, विफाकी जमहूरिया जर्मनी, चीन, रूस, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जनूबी कोरिया, स्पेन, भारत, श्रीलंका, कीनिया, बांग्लादेश और मशरक़ी वस्ता के मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान की अहम दरामदात की तफसील दर्ज ज़ेल है। नंबर 1, खाम तेल। पाकिस्तान में मदनी तेल के जखायर मौजूद हैं, लेकिन इनकी पैदावार मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी है। इसलिए बैरूनी ममालिक से दरामद करना पड़ता है। जिन ममालिक से हम तेल दरामद करते हैं, इनमें सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, मशीनरी। हमारे मुल्क का सनअती शोबा दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में काफी पीछे है। हमें बहुत सी सनअतों के लिए मशीनरी और दीगर आलात बैरूनी ममालिक से दरामद करने पड़ते हैं। इन ममालिक में जापान, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी वगैरह शामिल हैं। नंबर 3, चाय। पाकिस्तान में चाय की पैदावार बहुत कम है। मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए चाय बैरूनी ममालिक से दरामद करना पड़ती है। चाय आमतौर पर कीनिया, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह से दरामद की जाती है। नंबर 4, ज़रई अदवियात। ज़राअत के शोबे में बहुत सी फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए मुख्तलिफ अदवियात की ज़रूरत होती है। ये अदवियात मखसूस किस्म के केमिकल से तैयार होती है, जो हमें दूसरे ममालिक से दरामद करनी पड़ती है। ये ज़्यादातर जापान, जर्मनी वगैरह से मंगवाई जाती हैं। नंबर 5, ملک کے کچھ حصوں میں کاغذ بنانے کے کارخانے موجود ہیں، لیکن ان کے پیداوار ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں، اس لیے کاغذ باہر سے منگوایا جاتا ہے۔ کاغذ زیادہ تر کینیڈا، جاپان، امریکہ وغیرہ سے درآمد کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، بجلی کا سامان۔ بہت سی مقامی صنعتیں ملک میں بجلی کا سامان تیار کر رہی ہیں، لیکن ملک کی ضروریات ان صنعتوں کی پیداوار سے زیادہ ہیں، اس لیے بجلی کا مختلف قسم کا سامان دوسرے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ بجلی کا سامان زیادہ تر برطانیہ، جاپان اور امریکہ وغیرہ سے درآمد کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، گاڑیاں۔ ذرائع نقل و حمل میں بہت سی گاڑیاں ملک میں بھی تیار کی جاتی ہیں، لیکن جدید ذرائع نقل و حمل میں شامل بہت سی گاڑیاں مثلا کاریں، موٹر سائیکل، بسیں وغیرہ درآمد کی جاتی ہیں۔ یہ گاڑیاں زیادہ تر جرمنی، جاپان اور اٹلی وغیرہ سے خریدی جاتی ہیں۔ نمبر 8، کیمیکلز۔ ہماری صنعتوں میں استعمال ہونے والے کیمیکلز ملک میں تیار نہیں کیے جاتے، اس لیے بیرونی ممالک مثلا جاپان، امریکہ، جرمنی اور برطانیہ وغیرہ سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی اہم برآمدات۔ پاکستان کی اہم برآمدات میں چاول، کپاس، سوتی دھاگا اور سوتی کپڑا، مچھلی، قالین اور گھریلو مصنوعات، چمڑا اور چمڑے کی مصنوعات، کھالیں، کھیلوں کا سامان، معدنی نمک، آلات جراحی، پھل، سبزیاں اور جوتے قابل ذکر ہیں۔ ہماری برآمدی تجارت زیادہ تر ایران، امریکہ، جاپان، فرانس، وفاقی جمہوریہ جرمنی، برطانیہ، چین، اٹلی، روس، ہانگ کانگ، سنگاپور، ہالینڈ، ہنگری، بنگلہ دیش، بلغاریہ، سری لنکا اور انڈونیشیا، نائجیریا، مشرق وسطیٰ اور مسلم ممالک شامل ہیں۔ پاکستان کی اہم برآمدات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، چاول۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، چاول ہمارے ملک کی ایک اہم فصل ہے۔ چاول کی پیداوار ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کے علاوہ بیرونی ممالک کو فروخت بھی کی جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کے چاول برآمد کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے۔ چاول زیادہ تر مشرق وسطیٰ کے مغربی ممالک، مغربی یورپی ممالک کے اور چند افریقی ممالک اور ایشیائی ممالک کو فروخت کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سوتی کپڑا اور سوتی دھاگا۔ ہمارے ملک میں سوتی کپڑا اور سوتی دھاگا بنانے کی صنعت نے بہت ترقی کی ہے۔ ملک کے بہت سے حصوں میں اس قسم کے کارخانے قائم ہو چکے ہیں۔ یہ کارخانے نہ صرف ملک کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، بلکہ بہت سے ممالک کو سوتی کپڑا اور سوتی دھاگا فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ ان کارخانوں سے حاصل ہونے والی مصنوعات زیادہ تر برطانیہ، سوڈان، امریکہ، جرمنی، ہانگ کانگ، پولینڈ اور بنگلہ دیش وغیرہ میں بھیجی جاتی ہیں۔ نمبر 3، چمڑا اور چمڑے کی مصنوعات۔ جانوروں کی کھالوں سے حاصل ہونے والا چمڑا بہت سے بیرونی ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر اس چمڑے کی مدد سے بہت سی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، جو ملک کی ضروریات پورے کرنے کے بعد بیرونی ممالک کو برآمد کر دی جاتی ہیں۔ ان ممالک میں اسپین، اٹلی، جاپان، ایران اور روس وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 4، کپاس۔ ملک کے نہری علاقوں میں زیادہ تر کپاس کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان ہر سال اعلیٰ قسم کی کپاس سے حاصل ہونے والی روئی بہت سے ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ جو ممالک یہ روئی خریدتے ہیں ان میں انڈونیشیا، جاپان، بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ قابل ذکر ہیں۔ نمبر 5، قالین۔ قالین بانی ہمارے ملک کی اہم صنعت ہے۔ اس صنعت کا شمار گھریلو صنعتوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت عمدہ قالین تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ قالین ملک کے اندر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ممالک مثلاً امریکہ، جرمنی اور مشرق وسطیٰ وغیرہ کے ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، مچھلی۔ ہمارے ملک کے ساحلی علاقوں سے پکڑی جانے والی مچھلی بہت سے ممالک کو فروخت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں پکڑی جانے والی مچھلی ملک کی ضروریات سے زائد ہوتی ہیں۔ جن ممالک کو یہ مچھلی فروخت کی جاتی ہے ان میں مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے ممالک شامل ہیں۔ نمبر 7، پیٹرولیم کی مصنوعات۔ پاکستان میں تیل صاف کرنے والے کارخانے موجود ہیں۔ ان کارخانوں میں مقامی اور غیر ملکی خام تیل صاف کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صاف شدہ تیل سے بہت سی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں جو برآمد کی جاتی ہیں۔ صاف شدہ تیل اور اس سے بننے والی مصنوعات زیادہ تر بھارت، ترکی اور دیگر ایشیائی ممالک کو فروخت کی جاتی ہیں۔ نمبر 8، دستکاری کی مصنوعات۔ पाकिस्तान में दस्तकारी की सनअत ने बहुत तरक्की की है। मुल्क में बहुत सी दस्तकारी की मसनूआत तैयार की जाती हैं। इन मसनूआत में बर्तन, खेलों का सामान और आलात जर्राही वगैरह शामिल हैं। ये ज़्यादातर मुत्तहिद अरब अमारात, इंडोनेशिया और यूरोप के ममालिक को फरोख्त की जाती हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमती इकदाम। नंबर 1, फरोग बरामदात का इदारा। हुकूमत पाकिस्तान ने 1963 में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम किया ताकि पाकिस्तानी बरामदात को दुनिया में मुतारिफ करवाया जा सके। इसके अलावा ये इदारा मंदरजा झेल काम सर अंजाम देता है। नंबर 1, बरामदात में इजाफे वाली सनतों के क्याम की सिफारिश तैयार करना। नंबर 2, मुल्की बरामदात के हदफ तैयार करना। नंबर 3, मुल्की बरामदात के मैार को बेहतर बनाना। नंबर 4, सरकारी सतह पर बरामदात के सौदे तय करना। नंबर 5, तजारती वफूद को दूसरे ममालिक में भिजवाना। नंबर 2, बरामदात की मैारबंदी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से एक इदारा कायम किया है जो पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को अशिया के डिज़ाइन, स्टाइल और मैार के बारे में मशवरा देता है। नंबर 3, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम। इस स्कीम का मकसद बरामद कुनिंदगान की माली ज़रूरियात को पूरा करना है। ये स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शुरू की है। स्टेट बैंक तजारती बैंकों को बहुत सी रियायती शराह पर कर्ज फराहम करता है और तजारती बैंक तमाम गैर रिवायती बरामदात जैसे चावल, कपास, ऊन और चमड़े की मसनूआत वगैरह पर रियायती शराह से कर्जा जारी करता है। नंबर 4, आबादी पर कंट्रोल। मुल्क में पैदावारी अशिया की मकदार मुल्की आबादी की बढ़ती हुई शराह के पेश नज़र मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रहती है और मुल्की ज़रूरियात के लिए ज़रूरी अशिया बरामद करनी पड़ती हैं। अगर आबादी में इजाफे पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तो मुल्की ज़रूरियात में कमी वाक़ हो सकती है और पैदावारी अशिया की इजाफी मकदार बरामद की जा सकती है। इस तरह मुल्की बरामदात में इजाफा हो सकता है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने खानदानी मनसूबा बंदी की वजारत कायम की है जो आबादी पर कंट्रोल हासिल करने में कोशा है। नंबर 5, बैरूनी मंडियों का तरक्याती फंड। हुकूमत पाकिस्तान ने बरामदात बढ़ाने के लिए एक इदारा कायम किया है जिसका मकसद बैरूनी मंडियों का जायजा लेना और बरामद कुनिंदगान को इन मंडियों के बारे में मालूमात फराहम करना है। इस इदारे के क्याम से मुल्की बरामदात में काफी इजाफा हुआ है। नंबर 6, करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव। मुल्की करेंसी की कदर में कमी की सूरत में बरामदात सस्ती हो जाती हैं जिनकी वजह से बरामदात में इजाफा हो जाता है। लिहाजा करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव के पेश नज़र बरामदात में कमी बेशी वाकई होती रहती है। करेंसी की कदर में कमी के असरात बरामदात पर भी पड़ते हैं। ऐसी सूरत में बरामदात महंगी हो जाती हैं जिसका बोझ मुल्की मईशत पर पड़ता है। हुकूमत इस सिलसिले में तवाजुन बरकरार रखने में खसूसी तवज्जो ले रही है। तवानाई। पाकिस्तान में तवानाई के रिवायती जराए गैस, तेल, कोयला और पनबिजली हैं। तकरीबन 65% तवानाई की जरूरत इन्हीं जराए से पूरी की जाती है। तवानाई की बाकी मानदा जरूरियात लकड़ी और जानवरों के गोबर से पूरी की जा रही है। पाकिस्तान में तवानाई के मंदरजा झेल वसाइल हैं। नंबर 1, बिजली। क़याम पाकिस्तान से पहले की जरूरियात को इन इलाकों में दो तरीकों से पूरा किया जाता था। कुछ इलाकों में पनबिजली और ज्यादा इलाकों में थर्मल तरीकों से भी पैदावार हासिल की जाती थी। सूबह पंजाब में दरियाए ऊहल पर जिला कांगड़ा में जोगंदर नगर के मुकाम पर बिजली पैदा करने का सबसे पहला मंसूबा था जो कि मौजूदा हिंदुस्तान में वाक़ है। इसी तरह पाकिस्तान के मौजूदा सूबा सरहद के इलाके मालाकंड के मुकाम पर दरियाए सवात से कुछ पनबिजली हासिल की जाती है। इसमें तेल, कोयला और भाप वगैरह का इस्तेमाल होता है। आज़ादी के बाद मुल्क में बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक इदारा कायम किया है जिसे वापडा यानी पानी और बिजली का तरक्याती इदारा कहते हैं। इस इदारे ने मुल्क में बेशुमार मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। इसमें कुछ मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। जो मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं वो मुल्क में बिजली की ज़रूरियात को काफ़ी हद तक पूरा कर रहे हैं। पन बिजली पैदा करने के अहम मंसूबे। नंबर 1, तरबेला पन बिजली घर। ये पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा मंसूबा है। सूबह सरहद के जिला हजारा में तरबेला के मकाम पर दरिया सिंध में बंद बांध कर एक डैम तामीर किया गया है। ये 9,000 फीट लंबा और 485 फीट चौड़ा है। इसके अकब में 50 मील लंबी झील वाक़ है, जिसमें पानी जखीरा किया जाता है। इसमें 1,12,00,000 क्यूसिक फीट पानी जमा किया जा सकता है और 20,00,000 किलोवाट बिजली हासिल की जाती है। इस मंसूबे से मुल्क में बिजली और आपाशी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। नंबर 2, मंगला पन बिजली घर। हमारे मुल्क में बिजली पैदा करने का दूसरा बड़ा मंसूबा है। ये डैम जिला जहलम में मंगला के मकाम पर दरिया जहलम में बंद बांध कर 11,000 फीट लंबा और 380 फीट ऊंचा तामीर किया गया है। इसके अकब में 40 मील लंबी झील पानी के जखीरा करने के लिए बनाई गई है। यहाँ से 800 मेगावाट बिजली हासिल होती है। नंबर 3, 3 वार्षिक पनबिजली घर। पानी में बिजली पैदा करने पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का तीसरा बड़ा मंसूबा 1960 में कनाडा के तावन से मुकम्मल हुआ। ये डैम पेशावर से तकरीबन 20 मील के फासले पर दरियाए काबुल में बंद बांध कर तामीर किया गया है। ये बंद 750 फीट लंबा और 235 फीट ऊंचा है। यहाँ से 160 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इसके अलावा इस मंसूबे से हासिल होने वाले पानी से तकरीबन 20,000 एकड़ रकबे को काबिले काश्त बनाया गया। नंबर 4, रसूल पन बिजली घर। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का चौथा बड़ा मंसूबा 1951 में मुकम्मल हुआ। इस मंसूबे में नहर अपर जहलम के पानी को 85 फीट बुलंदी से गिराकर रसूल के मुकाम पर नहर लोअर जहलम में डाला गया है। यहाँ से 22,000 किलोवाट बिजली पैदा की जा रही है। इस मंसूबे से हासिल होने वाली बिजली को जिला फैसलाबाद और जिला शेखुपुरा में सनअती और ज़रई शोबे की जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, मालाकंड पन बिजली घर। ये पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का सबसे पुराना मंसूबा है। इसे 1938 में तामीर किया गया। इस मंसूबे में दरिया सवात से नहर निकाल कर 200 फीट की बुलंदी से पानी से गिरा कर जबान के मुकाम पर बिजली पैदा की गई है। इस मंसूबे से 20 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। नंबर 1, गाजी ब्रोथा पन बिजली घर। ये मंसूबा दरिया सिंध में गाजी के मकाम पर तरबेला के बहाव से 7 किलोमीटर नीचे कायम किया गया है। इसके जरिए 1450 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। नंबर 7, भाषा पन बिजली घर। दरिया सिंध पर तामीर किया गया है। ये डैम 660 फीट बुलंद है। इस डैम में 3,360 मेगावाट बिजली हासिल की जाती है। थर्मल बिजली, तेल और गैस से चलने वाले बिजली घरों से हासिल होने वाले बिजली को थर्मल बिजली कहते हैं। पाकिस्तान के थर्मल बिजली घर पाकिस्तान के अहम थर्मल बिजली घर मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, कराची के थर्मल बिजली घर। हुकूमत पाकिस्तान ने कराची और लसबेला के अजला में बिजली की फराहमी तरसील और तकसीम के लिए कारपोरेशन कायम किया, जिसे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का नाम दिया गया है। इस कारपोरेशन ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस और तेल से चलने वाले थर्मल बिजली घर कायम किए जाते हैं। इन बिजली घरों से 137 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। नंबर 2, गुद्दू थर्मल बिजली घर। सूबे सिंध में गुद्दू के मकाम पर गैस गैस से चलने वाले थर्मल बिजली घर कायम किया गया है। ये थर्मल बिजली घर सूबे सिंध के बालाई इलाकों को बिजली फराहम करता है। इस बिजली घर से 200 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। नंबर 3, मुल्तान थर्मल बिजली घर। बाबडा ने मुल्तान के करीब पीरा गायब के मुकाम पर एक थर्मल बिजली घर कायम किया है। इस बिजली घर से 265 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। नंबर 4, फैसलाबाद के थर्मल बिजली घर। फैसलाबाद में 3 थर्मल बिजली घर काम कर रहे हैं। इनसे एक बिजली घर भाप से चलता है, जबकि 2 बिजली घर गैस टर्बाइन कहलाते हैं। भाप से चलने वाला बिजली घर 132 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जबकि गैस से चलने वाले दोनों बिजली घरों की मजमू पैदावार 215 मेगावाट है। नंबर 5, कोटरी थर्मल बिजली घर। ये थर्मल बिजली घर कोटरी के नज़दीक सनअती इलाकों को बिजली फराहम करता है। ये बिजली घर गैस से चलता है। इस बिजली घर से 80 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। कोयला थर्मल बिजली घर। 1964 में भाप से चलने वाला बिजली घर कोयटा के गिरदोनवाह के इलाकों को बिजली सप्लाई करने के लिए कायम किया गया। बाद में इसकी तौसी की गई और गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस बिजली घर से 50 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। एटमी तवानाई, एटमी तवानाई को तरक्की पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मुल्क अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सके। खातिर ख्वाह तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वाफर मकदार में एटमी तवानाई पैदा की जाए। हमारे मुल्क के मायानाज साइंसदानों ने अपनी आला साइंसी और फनी सलाहियतों से काम लेकर पाकिस्तान को एटमी तवानाई के लिहाज से तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में ला खड़ा किया है। पाकिस्तान के एटमी बिजली घर दर्ज झेल हैं। नंबर 1, कराची एटमी बिजली घर। 1971 में कनाडा की हुकूमत के तावन से कराची के करीब एक एटमी बिजली घर कायम किया गया। इस एटमी बिजली घर से हासिल होने वाली बिजली कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेमाल की जाती है। इस बिजली घर से 360 मेगावाट बिजली हासिल की जाती है। नंबर 2, चश्मा एटमी बिजली घर। अवामी जमहूरिया चीन के तावुन से पाकिस्तान में दूसरा एटमी बिजली घर चश्मा के मकाम पर कायम किया गया है। इस एटमी बिजली घर से हासिल होने वाली पैदावार का अंदाजा 300 मेगावाट लगाया गया है। जियो थर्मल तवानाई, इसे अर्जी हरारत कहते हैं। ये चट्टानों के हरकत और तसादम से पैदा होती है। जमीन के नीचे गहराई में हर वक्त टूट फूट होती रहती है। इस वजह से जमीन के अंदर हरारत पैदा होती है। इस मौके पर पानी भाप बन जाता है। इस भाप को ड्रिल करके रास्ते में टरबाइन वगैरह लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है। इस तवानाई को अमेरिका और जापान वगैरह में इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में इसके जखायर चित्राल, स्कर्दू, कराची, मकरान और चागई में पाए जाते हैं। इन जखायर को इस्तेमाल में लाकर बिजली पैदा की जा सकती है। शमसी तवानाई, सूरज की रोशनी से जो तवानाई हासिल की जाती है उसे शमसी तवानाई कहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। शमसी तवानाई से मुल्क में मजमूई तौर पर तकरीबन 135 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। इस तवानाई के जरिए मुल्क के दूर दराज और खास तौर पर दही इलाकों में बिजली पैदा की जा सकती है। इसके अलावा शमसी तवानाई का हुसूल फजा में आलूदगी भी नहीं फैलाता। बायोगैस, हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में देहात के लोगों को जानवरों से हासिल होने वाले गोबर से गैस बनाने के लिए मुतारिफ करवाया। हुकूमत ने किसानों को गोबर प्लांट लगाने के लिए इमदादी रकम फराहम की। मुल्क में इस वक्त सैकड़ों बायोगैस यूनिट काम कर रहे हैं। इससे पहले देही आबादी के ज्यादातर लोग जानवरों के गोबर के उपले बनाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिससे आलूदगी के अलावा सेहत पर मुजर असरात पड़ते थे। जदीद तहकीक ने इस नुकसान देने वाली चीज को मुफीद बना दिया है। हवा से हासिल होने वाली तवानाई, हुकूमत पाकिस्तान ने तरक्की याफ्ता ममालिक की तकलीफ करते हुए हवाओं की ताकत से फायदा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ निजी लोगों की हौसला अफजाई की है। हमारे मुल्क के साहली इलाकों में एक ही रुख पर तेज हवाएं चलती हैं। चुनाचा साहली इलाकों में बादबानी चक्कियां और कुओं से पानी हासिल करने वाले पंप नस्ब किए गए हैं। ये तवानाई हासिल करने का सबसे कम खर्च तरीका है। तालीम, मुल्क कौम की तरक्की का इन्हिसार तालीम पर है। तालीम और मुआशी और मुआशरती तरक्की के माबैन गहरा ताल्लुक है। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक तालीम ही की वजह से बुलंद मकाम पर फाइज हैं। इसी वजह से तरक्की पजीर ममालिक मजमू कौमी आमदनी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा तालीम के लिए मखसूस कर रहे हैं। तालीम के बुनियादी मकासद, तालीम के दो बुनियादी मकासद हैं। नंबर 1, पहला बुनियादी मकसद, पाकिस्तान में तालीम का पहला बुनियादी मकसद ये है कि हर शहरी अपने मुल्क की फिक्री और सियासी असास और इस्लामी नजरिया हयात को अच्छी तरह समझे और इसे अपनाए। वतन से मोहब्बत और मुल्क के दूसरे शहरियों से मसावात, इंसाफ और भाईचारे की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करें। दूसरा बुनियादी मकसद, तालीम का दूसरा बुनियादी मकसद ये है कि उसकी मदद से हर शहरी अपने अंदर हुकूक और फराइज का मुकम्मल एहसास और शऊर पैदा करे, ताकि वो अच्छा शहरी बने। इस तरह इसकी सोच और इसका अमल माशरे की फलाह और तरक्की में ममदो मुआविन साबित होगा। मुआशरती तब्दीली, कौमी तरक्की और बामकसद मुआशरती तब्दीली के अमल में शोबाए तालीम की अहमियत मुसल्लम है। तालीम के जरिए लोगों की तख्लीकी कुव्वतों को उजागर किया जाता है, ताकि माशरे में तख्लीकी और तगैयुर के अमल को तेज किया जा सके। मुल्की वसाइल का मौसर इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में मुमकिन हो सकता है कि मुल्क की ज्यादा से ज्यादा आबादी तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता हो। इक्तसादी तरक्की और तालीमी तरक्की भी बहुत करीबी ताल्लुक है। شرائع خواندگی. حکومت پاکستان کی مسلسل منصوبہ بندی کے باوجود پاکستان میں تعلیم یافتہ آبادی کا تناسب بہت تھوڑا ہے. 1998 کی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی شرح خواندگی 45% تھی، جو بڑھ کر 2008 میں 56% ہو چکی ہے. نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کے تحت 2010 تک شرح خواندگی 70% تک لے جانے کا پروگرام ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے. شرح خواندگی کم ہونے کے علاوہ ہمارے ہاں فنی تعلیم یافتہ اشخاص کی بھی کمی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں شرح خواندگی میں اضافہ کیا جائے اور اعلیٰ تعلیم دینے والے اساتذہ فنی ماہرین کی تعداد میں اضافہ ہو، تاکہ قومی ترقی کے عمل کو تیز کرنا ممکن ہو سکے. یہ صفحہ نمبر 160 ہے. پارٹ نمبر 14 یہاں مکمل ہوتا ہے.